10। इसके बाद मैं अपनी नौकरी पर चला गया। कुछ दिन नौकरी करने के बाद एक दुर्घटना हुई। एक साधु आए, एक पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। धुनी रमाएं, चिमटा गाड़े। मेरी निगाह नए ढंग की थी। साधु के संबंध में भी निगाह हो गई थी। स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी राम तीर्थ जी की बातें सुनकर, किताबें पढ़कर, साधु का संबंध पारलौकिक साधना से होता है। साधना प्राचीन ढंग की तरह तरह की हैं। मैं बिल्कुल आधुनिक था। आदमी सत्य की प्राप्ति के बाद समझने की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि सत्य स्वयं तब समझ के तौर पर मिल जाता है। उस पर आधुनिकता और प्राचीनता के नाम का केवल प्रभाव पड़ता है। मैंने जिन साधुओं को पढ़ा था, उन्होंने नशे के खिलाफ बहुत कुछ लिखा था, पर जो साधु नशा करते हैं, वे रास्तों पर मारे मारे फिरते हैं। स्वामी विवेकानंद जी या स्वामी राम तीर्थ जी की तरह अंग्रेजी दां नहीं, न अंग्रेजी दां उनके शिष्य हैं, जो गांजे की चिलम से भड़क जाएंगे। ऊंचे सत्य में विद्या की भी गुंजाइश नहीं रहती। शब्द खत्म हो जाता है, लिहाजा रास्तों पर घूमने वाले थकान की प्रतिक्रिया मिटाने के लिए नशा करते हैं। जिस तरह रोग में जहर का प्रयोग चलता है, उसी तरह जीवन के नाश में प्रतिक्रिया में वे नशा करते हैं। उनके पास चरित्र का मूल्य है, पर उस चरित्र का अर्थ ऐसा नहीं कि आदमी 7 रोज पखाना न जाए या 5 रोज पेशाब न करे तो सिद्ध है। अंग्रेजी दां गृहस्थ, अंग्रेजी दां साधु ही खोजता है, क्योंकि यूरोप की अमेरिका की बातें होनी चाहिए। इस पर उनकी क्या राय है? सत्य के पास यूरोप अमेरिका नहीं। रास्ते वाले साधु यहाँ अंग्रेजी दां साधुओं को ही धोखा देता हुआ समझते हैं। मैंने कईयों को कहते सुना है, अपना अपना गढ़ बनाए हुए हैं। खैर, यह साधु अनेक अर्थों में साधु थे। इनकी इच्छा थी जगन्नाथ जी जाएंगे, किराया मिल जाए। राजा साहब के हाउस होल्ड सुपरिटेंडेंट साहब इन पर प्रसन्न थे। उन्होंने राजा साहब से इनकी साधुता की तारीफ करते हुए इनके किराए की प्रार्थना की। राजा साहब ने सुन लिया। कचहरी हो जाने पर शाम से 10 बजे तक मैं राजा साहब के पास रहता था। उन्हें गाने बजाने का शौक था, अच्छा मृदंग बजाते थे। जाने पर उन्होंने कहा, ।, एक साधु आए हैं, देख आओ, ।। राजा लोग एक विषय को अनेक मुखों से सुनते हैं, तब राय कायम करते हैं, इसलिए कि उनके कान ही कान हैं, आंखें सब जगह नहीं पहुंचते। मैंने राजभक्ति की प्रकाष्ठा दिखलाते हुए उसी वक्त कहा, हुजूर, राजकोष का रुपया इस तरह नहीं खर्च होना चाहिए, ।। तब मेरे मस्तिष्क में अनेक तरहें थी, जैसी उपयोगितावादी में होती है। राजा साहब मुस्कुराए। मैं कुछ नहीं समझा, लेकिन उनकी आज्ञा की उपयोगिता समझता था, क्योंकि नौकर था। प्रणाम करके साधु के पास चला, मन में यह निश्चय लिए हुए कि कोष की एक कौड़ी नहीं जानी चाहिए। मन में यह भाव होने के कारण साधु के प्रति रूप कैसा था, कहने की आवश्यकता नहीं। मुझे देखते ही साधु ने कहा, ।, आइए। मैंने मन में कहा, यही तो ठग विद्या है। खुलकर कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा, तुम काम क्यों नहीं करते, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। साधु ने मुझे आप कहा था, मैंने तुम कहा, तब मुझे यह नहीं मालूम था ईश्वर की प्राप्ति के लिए निकला हुआ मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के बाद दग्ध कर्म हो जाता है, उसके मन में केवल ईश्वर रहता है। साधु ने कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैं आप कहता हूँ, आप तुम कहते हैं, मैं क्या काम करूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मेरी आप कहने की प्रवृत्ति नहीं हुई, मैंने कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा, तुम्हें संसार में कोई काम ही नहीं मिलता, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। साधु ने कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा, आप फिर तुम कहते हैं, यह सब काम कौन करता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मुझे मालूम हुआ यह पूरा ठग है, क्योंकि लिखी किताबों में साधुओं के हथकंडे और तरह तरह की शिकायतें पढ़ी थीं। कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा, तुम्हें रुपया नहीं मिलेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। साधु ने कहा होश में आ जा, और चिमटा जोर से जमीन में गाड़ दिया। मुझे मालूम हुआ वह चिमटा मेरे सिर में समा गया, गर्दन झुक गई, लेकिन मुझ में मामूली आग नहीं थी। मेरा अभिप्राय असत्य था, फिर भी साधु के प्रति श्रद्धा न निकली। साधु ने जैसे सिर पर सवार होकर पूछा डबल इन्वर्टेड कॉमा, तू राजा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जो अपराध मैं कर रहा था वही साधु करने लगा, क्योंकि मैंने साधु को तू नहीं कहा था, तुम कहा था। पर अभी मैं अपने को संभाल रहा था जैसे लड़ने वाला नीचे चला गया हो। हार न खाई, संभल कर कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा, नहीं मैं राजा नहीं हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। साधु व्यंग कर रहा था, उसका राजा का अर्थ राम था, मेरा केवल सीधा वही राजा जहाँ से मैं आया था। साधु ने कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा, तू नौकर है तो नौकर की तरह बातें क्यों नहीं करता, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। साधु फिर भूला, नौकर भी राम है, खास तौर से मैं महावीर को अधिक प्यार करता था, राम को कम। साधु चाहता था मैं अपनी पकड़ छोड़ दूं तो वह होश दे दे, लेकिन मेरी पकड़ में नौकर नहीं था, साक्षात महावीर थे। पकड़ छुड़ाने के लिए साधु ने कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा, तेरी नौकरी नहीं रहेगी, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगर मैं यहाँ करुण हुआ होता तो साधु ने बाजी मारी होती, मैंने कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा, महाराज तब तो मैं बच जाऊँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यह महावीर की ही वाणी थी राम के प्रति, तब मैं यह कुछ नहीं जानता था। साधु के होश उड़ गए, यह नौकरी के लिए आग्रह नहीं था, फिर मेरे सिर उतने बच्चों का बोझ था। साधु रोने लगा, कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा, अरे तेरे लिए मैंने घर बार छोड़ दिया और तू मुझे सताता फिरता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब मैं भी समझा, मुझे ज्योति भी दिखी, पहले जूही की कली लिखते वक्त दिखी थी, तब नहीं समझा था, अब कि एक साधु ने पहचान करा दी। मैं चले लगा तो साधु ने कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो चलो चले, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। लेकिन मैंने संसार की तरफ खींचा, क्योंकि ज्ञान के साथ कर्म कांड जो बाकी था उसकी ओर आकर्षण हुआ। इस समय साधु को वैसा ही कष्ट हुआ जैसे मुझे हुआ था, बड़ी ही करुण ध्वनि की, जैसे बदन टूट रहा हो। राजा साहब के पास गया तब सब भूल गया, जड़ राजा का भूत सवार हो गया। राजा साहब ने पूछा डबल इन्वर्टेड कॉमा, कैसे साधु हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे आदमी को रुपए नहीं देने चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। राजा साहब चुप हो गए। सुबह सुपरिटेंडेंट साहब फिर आए और 20 रुपए की मंजूरी करा ली। रुपए लेकर सुपरिटेंडेंट साहब गए, पर हाथ जो बढ़े वे दंभ के हाथ थे। साधु ने कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैं रुपए नहीं लूँगा, कल राजा आए थे, मैंने उन्हें नाराज कर दिया, मैं जाता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कहकर अपना चिमटा वहीं फेंक दिया और चला गया। सुपरिटेंडेंट साहब ने रास्ता रोक कर कहा, महाराज डबल इन्वर्टेड कॉमा महाराज वह राजा नहीं था, वह तो एक मामूली नौकर है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। साधु ने कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा तू नहीं समझता, वह राजा था। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सुपरिटेंडेंट साहब मुंह फैलाकर देखने लगे। साधु चला गया। कुछ देर बाद मैं भी उस रास्ते से गुजरा। सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा तुमने कल साधु से क्या कहा था, मैं राजा हूँ। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं दादा। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने ऐसा तो नहीं कहा। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सुपरिटेंडेंट मुझसे भी बड़े राजभक्त थे। कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा तुमने कहा है, साधु ने रुपए नहीं लिए, अपना चिमटा फेंक कर चला गया, मैं महाराज से अभी रिपोर्ट करता हूँ। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कौन समझता है वह निश्चल नत जन विश्व के सामने नत है, वह दादा कहने वाला और है, यह सलाम करने वाला नहीं। दादा ने राजा साहब से रिपोर्ट की बड़े उदात्त शब्दों में, सुनी बात पर जैसी अतिशोक्ति होती है। मैं जाने पर सहस्नेह राजा साहब ने कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा तुमने साधु से कहा था मैं राजा हूँ। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उत्तर उस तरह मुझसे ना देते बना जिस तरह देने चाहिए था, क्योंकि मैं भी राजा को साक्षात पुरुषोत्तम नहीं देख रहा था। कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हाँ मैंने कहा, राजा का नौकर राजा नहीं तो क्या है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यह अद्वैतवाद राजा समझते थे, भारत की नौकरशाही का यही अर्थ है। उसी समय के लिए निष्कृति मिली, कठिन संसार की उलझन साथ ही थी। एक दिन मैं राजा साहब के यहाँ से अपने डेरे जा रहा था, रात के 11 बजे होंगे। सुपरिटेंडेंट साहब कचहरी नहीं गए थे, लेकिन हाथी खाने के पास जो जगह उनके मकान से मील भर है मुझे मिले। वह शराब पीते हैं, यह मशहूर बात थी। शराब पीने वाला और भी बहुत कुछ करता है, संसार का अपना एक चरित्र है। दिखाऊं? उसके प्रतिकूल कुछ होने पर घबराहट होती है। सुपरिटेंडेंट साहब को रात 11 बजे देखने के साथ मैं चौंका, वह भी चौंके। वह मेरी शिकायत कर चुके थे, इसलिए भी मैं चौंका। वह यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे थे? चौंका चौकी के साथ मुझे शराब की बू मालूम दी, पर मैं चुपचाप चला गया। दूसरे दिन कथा प्रसंग पर मैंने राजा साहब से कह दिया, पर शिकायत के तौर पर नहीं, मजाक के तौर पर। सुपरिटेंडेंट साहब पीते हैं, यह सब लोग जानते हैं, राजा साहब और बहुत जानते थे। हंसने लगे, पर बड़े आदमी कहलाने वाले लोग अपने मातहत रहने वाले या नौकरों से तरह तरह से पेश आते हैं। एक दिन एकाएक मुझे हुक्म हुआ, डबल इन्वर्टेड कॉमा गोपाल जी के मंदिर में जाकर कसम खाकर कहो, तुमने सुपरिटेंडेंट साहब को शराब की हालत में देखा है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सुपरिटेंडेंट साहब को हुक्म दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा तुम कहो, मैंने नहीं पी। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सुपरिटेंडेंट साहब संसारी आदमी थे, एक गवाह ठीक कर लिया था, फीलवान, यह कहने के लिए कि सुपरिटेंडेंट साहब के लड़के को भूत लगा था, वह फूंक डालने गया था, उसे हुक्म हुआ वह कुरान लेकर कहे। कसम के दिन फीलवान नहीं गया, हम दोनों गए। मैंने जैसी सुगंध पाई थी उसके लिए कसम खाई, सुपरिटेंडेंट साहब बिल्कुल डकार गए। कसमी कसमा हो जाने के बाद मैंने इस्तीफा दाखिल किया, राजा साहब को एक निजी पत्र लिखा, मेरे धर्म स्थल पर हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार न था। फिर मैंने सुपरिटेंडेंट साहब को नौकरी लेने के लिए नहीं कहा था। सुपरिटेंडेंट साहब ने उन्हें यही समझाया था कि उस साधु के संबंध में चूंकि उन्होंने सही सही बातें कही हैं, इसलिए उनकी नौकरी लेने के अभिप्राय से मैंने यह जाल रचा है। अब जब से हुजूर ने वह सब काम छोड़ दिया है, तब से हुजूर की बराबर अनुवर्तिता वह कर रहे हैं, इसलिए हुजूर ने गुरु मंत्र लेने की बात भी कही थी। गुरु मंत्र का प्रभाव होता ही है। मेरा इस्तीफा मंजूर न किया गया। राजा साहब की चिट्ठी आई, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यो ध्रुवानी परित्यजय अध्रुवानी निश्वेते। मैंने कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, अध्रुव की ही सेवा सही, मेरी तनख्वाह दे दी जाए, मेरे काम समझ लिया जाए, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नौकरी छोड़ दी। कई लोग, यहाँ तक कि असिस्टेंट मैनेजर साहब, जिन पर रोज़ रिश्वत का इल्ज़ाम लगता था, मिलने पर कह गए, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ तुम ही एक आदमी हो। बहुतों ने झुकी कमर सीधी कर कर के देखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने अपनी चीज़ें नीलाम करके एक भतीजे के साथ लेकर गांव का रास्ता लिया। गांव पहुंचकर ससुराल गया। देश में पहला असहयोग आंदोलन जोरों पर था। खलिहानों में बैठे हुए किसान जमींदारों से बचने के लिए रह रह कर महात्मा गांधी जी की जय चिल्ला उठते थे। कुछ अति आधुनिक सरकारी नौकर, जमींदार और पुलिस के आदमी मजाक करते थे। तरह तरह के अपशब्द कुछ अकर्मण्य मालदार राजनीतिक विद्वान अखबारों का उल्था कर कर टिक्का टिप्पणी के साथ समाज में चर्चा करते हुए पाचन शक्ति बढ़ा रहे थे। ऐसे ही एक ने मुझसे कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, महात्मा जी ने सिद्ध कर दिया है, चरखा चलाने से कम रोटियां चल सकती हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैं बेकार था। सरस्वती से कविता लेख वापस आते थे, एक आध चीज छपी थी। प्रभा में मालूम हुआ, बड़े बड़े आदमियों के लेख कविताएं छपती हैं। एक दफा ऑफिस जाकर बातचीत की, उत्तर मिला, इसमें भारतीय आत्मा, राष्ट्रीय पथिक, मैथिली शरण गुप्त जैसे कवियों की कविताएं छपती हैं। ऐसे ही कुछ लेखकों के नाम सुने, मुंह लटका कर लौट आया। जीविका का कोई उपाय न था। चार भतीजों की परवरिश सिर पर, जिन सज्जन ने चरखे की उपयोगिता समझाई थी, उन्हीं एक तकुआ खरीद लाने के लिए पैसे दिए थे। वह कानपुर गए थे। यहाँ मेरे गांव के पड़ोस में कोरी बुनाई का काम करते हैं। मैं सीखने के लिए रोज जाने लगा। कोरियों ने कहा, तुम --, तुम महाराज होकर क्या यह काम करोगे? अरे कहीं भगवान बाँचो, --, वह सज्जन कानपुर से लौटे, बोले, --, जल्दी में था, खरीदने की याद नहीं थी, --, मन में अत्यधिक उथल पुथल थी। इसी समय कन्या दायग्रस्त भी आकर घेरते थे। वर्णनों में किसी की कन्या इंदिरा से कम न थी। बड़ा गुस्सा आया, ससुराल चला गया। कन्या दायग्रस्तों की संख्या वहां और अधिक दिखी। एक दिन गंगा के किनारे बैठा था, टहलते हुए कुल्ली आए। समय का प्रभाव कुल्ली पर बहुत पड़ा था। चेहरे से सभ्य राजनीतिक हो गए थे। मुझे देखकर उसी ढंग से नमस्कार किया। पहले की अदालत वाली सभ्यता अब राजनीतिक सभ्यता में बदली है, मैंने देखा। मैं बैठा था। कुल्ली ने सोचा मैं कोई महान राजनीतिक कर्मी हूँ। इधर कुल्ली अखबार पढ़ने लगे थे, त्याग भी किया था, अदालत के स्टाम्प बेचना छोड़ दिया था। महात्मा जी की बातें करने लगे, मैं सुनता रहा। जब कुछ पूछते थे तब जितना जानता था कहता था। एकाएक भाव में उमड़कर कुल्ली ने कहा, मुझे कुछ उपदेश दीजिए, --, मैं जला हुआ था ही, कहा, --, गंगा में डूब जाइए, --, --, यह आप क्या कह रहे हैं, --, पूरी राजनीतिक आश्चर्य में आकर पूछा, --, आप डूब सकते हैं या नहीं, --, डबल इनवर्टेड कॉमा डूब कैसे जाऊं, कोई मतलब की बात भी हो, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, डबल इनवर्टेड कॉमा मतलब की बात मुझे नहीं आती, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो आप बेमतलब यहाँ बैठे हैं हुए हैं, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, डबल इनवर्टेड कॉमा हाँ इतना ही मतलब था आपसे मिलने का, मतलब से तो नहीं आया था, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। कुल्ली मेरी ओर देखते रहे, उन्हें नहीं मालूम था इनके चारों ओर आग लगी है, चुपचाप उठकर चले गए।